ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाताहं सहगणा रघुनाथंवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रावण महीने के शुद्ध पक्ष के एकादशी से पूर्णिमा तक सभी गौड़ी वैष्णवों के मंदिर में झूलन यात्रा संपन्न होती है, श्री श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा। श्री राधा गोविंद जी बड़े प्रेम से झूला झूलते हैं। श्री वृंदावन धाम विविध प्रकार के दिव्य आनंदों का अनुभव करता है। जब श्री श्री राधा गोविंद जी झूले पर झूलते हैं, कौन से वन में झूला बनाना है, कौन से प्रकार के फूलों का झूला बनना है, कौन से वस्त्र पहनने हैं, कौन से अलंकार पहनने हैं, कौन से फूलों की माला पहननी है, कौन सा भोजन बनना है, कौन से राग में गीत गाना है, कौन से वाद्य बजने हैं, ये सब झूलन यात्रा का दिव्य चिंतन है। ये सब चिंतन ही झूलन यात्रा का परिपूर्णता है। बाकी जो भगवान के धाम में झूलन यात्रा होती है उसे हम क्या मना सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्षमता है। बहुत गर्म है। तो भगवान के दिव्य धाम में जो झूलन का उत्सव होता है उसका हम केवल चिंतन ही कर सकते हैं। हमारा प्रयास तो हमेशा छोटा ही पड़ेगा भगवान के वास्तविक लीलाओं के सामने। लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं और वो अपने भक्तों का सर्वोदय भाव जो है उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारा झूला कितना भी छोटा क्यों न हो, कितना भी सामान्य क्यों न हो, हृदय के भाव से वो श्रेष्ठ बन सकता है। और जो भाव से हम झुलाते हैं तो वो हमारे हाथ से झूलना भी पसंद करेंगे, यही हमारी एकमात्र आशा है कि हमारे छोटे से तुच्छ भाव को भी वो स्वीकार करेंगे, हमें भी अपना बनाएंगे। यही हमारी एकमात्र इच्छा है और प्रार्थना है। तो संक्षेप में इस उत्सव का भाव ऐसा है कि हरियाली तीज यानी आज से 8 दिन पहले, मतलब आज क्या है, द्वादशी है ना आज, तो आज से 9 दिन पहले तृतीया के दिन राधा रानी विचार करती रहती है कि हमारा विवाह हो गया, सब सखियों का विवाह हो गया, सावन का महीना आया, सब सखियां अपने अपने मायके चली गई। क्योंकि रीति ऐसी है कि जिनका विवाह जावट में हुआ था, सब सखियों का अपने अपने ग्वाल वालों के साथ, तो रिवाज यह है कि सावन में नई नई ब्याही दुल्हन जो है वो अपने पति के घर में नहीं रहती, उसको मायके बुलाया जाता है। सावन महीना शुरू होने के पहले ही भाई आता है और भाई रथ में बिठाकर अपनी बहन को अपने घर ले जाता है, और अपने घर ले जाकर सब भाई और अपने घर के लोग, प्रेमी लोग राधा गोविंद को, राधा जी, राधा रानी को झूला झुलाते तो सब सखियां चली गई। सावन के 2 दिन भी बीत गए लेकिन श्रीदामा नहीं आए। तो राधा रानी पुकार रही है, क्या भैया मुझे भूल गए, क्या मेरी मैया बाबा मुझे भूल गए, मैं अभी ससुराल में आई तो सब मुझे भूल गए। और वहाँ पर बरसाने में सीधा माँ जी तैयारी कर रहे हैं जाने की कि हमारी प्यारी बहन को बरसाना में लाना है। तो विचार करते हैं कि जटिला कुटिला बहुत कठिन औरतें हैं, वो आसानी से उनको भेजेंगी नहीं। तो माता कहती है कुछ मिठाइयाँ उपहार भी ले, गिफ्ट भी लेके जाओ साथ में, जटिला के लिए अलग और कुटिला के लिए अलग। पहले उनको जाके मीठी मीठी बातें करके उपहार देके उनको प्रसन्न करो, उनको इत्र दो, उनको गहने दो, उनको घरगुती वस्तु दो, उनको फूल मालाओं से, चंदन से सम्मानित करो, फिर प्रस्ताव रखो कि हम श्री जी को लेने आए हैं। तो विशेष रूप से कुटिला के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट लेके जाते हैं। कुटिला बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करती थी। फिर सुदामा जी पहुँचते हैं रथ लेकर और जटिला कुटिला को प्रसन्न कर देते हैं, और कुटिला प्रसन्न होने पर फिर वो राधा रानी को भेजने को तैयार हो जाती है। तो ये अनोखी रथ यात्रा है बरसाने की, इसमें सुदामा जी आते हैं हरियाली तीज के दिन और राधा रानी को जावट से अपने घर ले जाते हैं। जब घर ले जाते हैं तो सब सखियां कदम के पेड़ों पर फूलों का झूला, हिंडोला बनाकर तैयार रहती हैं, और उसी दिन से झूले का उत्सव शुरू होता है हरियाली तीज से। तो हरियाली तीज के दिन, सावन का महीना है, सब जगह हरियाली होती है, कभी धूप पड़ती है, कभी छांव पड़ती है, कभी बरसात होती रहे, बहुत सुंदर वातावरण रहता है, हवा चलती रहती है, सब जगह नई नई हरियाली, नए नए फूल सब जगह बनते रहते हैं। तो सब पुजारी जो हैं वो हरे रंग का वस्त्र पहनते हैं, सब लोग हरे रंग का श्रृंगार करते हैं, हरे रंग का वस्त्र पहनते हैं, हरे रंग का दुपट्टा पहनते हैं, हरे रंग का पर्दा लगाते हैं, हरे रंग का डेकोरेशन करते हैं, सब हरे रंग का होता है, इसलिए उसको हरियाली तीज कहते हैं। हर प्रकार का रंग हरा होता है अभी, तो हरा रंग जो है वो आनंद का और समृद्धि का प्रतीक है, सब मन में प्रसन्नता आ जाती है। तो ब्रज में हरियाली तीज से हरिया ये आरंभ होता है झूलन का उत्सव, और इसमें हर मंदिर में नई शोभा है, हर मंदिर में नए प्रकार का झूला है, किसी का लंबा है, किसी का छोटा है, किसी का लंबा झूलता है, किसी का छोटा झूलता है, और कई लोग चमर करते रहते हैं, कई लोग मोरपंख करते रहते हैं, बीच बीच में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, बीच बीच मालाएं पहनते हैं, माला निकालते हैं फिर पहनते हैं, अत्र इत्र चढ़ाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, वाद्य बजाते रहते हैं। कितना सुंदर वातावरण है, सब लोग राधा कृष्ण को झुलाने में लगे हुए हैं, सबका आनंद केवल एक है, राधा और गोविंद जी को आनंद दिया जाए। झूला में झुलाते हुए प्रेम से झुलाते हुए आनंद दिया जाए। उसका भाव भी ऐसा है कि कभी राधा रानी कृष्ण को झुलाती है, कभी कृष्ण भगवान राधा रानी को झुलाते हैं, कभी दोनों को सखियां झुलाते हैं, कभी दोनों उतर जाते हैं और एक एक करके सखियों को झुलाते हैं। और जब बरसाने में राधा रानी को झुलाया जा रहा है तो श्याम सुंदर जी को रहा नहीं जाता है, तो श्याम सुंदर सखी बनकर आते हैं और सखी बनकर राधा रानी के साथ झूलते हैं, घूंघट ओढ़कर, कोई पहचानते नहीं उनको, उनको रहा नहीं जाता है क्योंकि तो राधा रानी झूल रही है, मैं अकेला क्या कर रहा हूँ, तो भी सखी वेश धारण करके श्यामा सखी बनकर सब लोग स्वागत करते हैं उनका, और सब सखियों के बीच में उसको झूले पे बुलाते हैं और सब सखियाँ उनको झुलाती हैं। ऐसा अनोखा आनंद है। और ये झूला जो है वृंदा रानी के नेतृत्व में इसका आयोजन होता है, सब प्रकार की व्यवस्था, कौन से राग में गाना है, कौन से राग में नृत्य करना है, कौन से ताल में नृत्य करना है, कौन से वाद्य कौन बजाने वाला है, सब कुछ वो तय करती है। फिर शाम से लेकर रात तक, सुबह 4 बजे तक चलता है वो, 2 घंटे का नहीं होता है, शयन तो होता ही नहीं उसमें, रात तक चलता है। फिर बीच रात में कौन सा गाना है, उसके बाद में कौन सा गाना गाना है, कौन नृत्य करने वाला है, कौन भोजन खिलाएगा, ऐसे सुंदर सुंदर गीत गाकर युगल जोड़ी को रिझाते हैं। फिर दूसरा दिन नया आनंद है, नए रंग है, नया गीत है, नए व्यंजन है, नया ताल है, नया सुर है। और कभी कभी झूला इतना उसका आनंद बढ़ता है कि सामने सामने झुलाते हैं तो फिर साइड में झुलाते हैं, फिर साइड में होने के बाद राइट में झुलाते हैं, फिर लेफ्ट में झुलाते हैं, फिर कभी लेफ्ट में और कभी राइट में झुलाते हैं, फिर उसके बाद गोल गोल झुलाते हैं ऐसे ऐसे, फिर वापस सीधे झुलाते हैं, फिर जोर से झुलाते हैं, फिर बहुत ऊपर तक जाता है, आगे से भी ऊपर तक, बहुत नीचे से भी ऊपर तक, फिर अचानक इतना जोर धक्का देते हैं कि झूला जो है वो गोल से घूम के नीचे आता है। राधा रानी बहुत डर जाती है, एकदम कृष्ण को गले मिलती है, डर के मारे, क्योंकि राधा रानी संकोच कर रही है, इसलिए सखियां देख रही हैं, तो कृष्ण इशारा करते हैं करो कुछ करो, तो वे जोर धक्का देते हैं, फिर वो गोल जब घूमते हैं तो तुरंत गले मिल जाते हैं, सब सखियां ताले बैठती हैं उसमें। फिर कुछ लोग आगे से धक्का दे रहे हैं, कुछ लोग झोंका पीछे से दे रहे हैं, कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं, वो साइड में जो है वो हवा दे रहे हैं पंखे की। तो उसमें सभी लोगों ने श्रृंगार किया है, राधा रानी ने भी किया है, श्यामा सखी ने भी किया है, बाकी सब सखियों ने माला पहनी हुई है, अलंकार पहना हुआ है। तो जब झूलते हैं ना, सारे अलंकार भी झूलते रहते हैं ऐसे आगे पीछे आगे पीछे, आप आगे जाएंगे झूले अलंकार पीछे आते हैं, आप पीछे जाएंगे तो अलंकार आगे आ जाते हैं। तो बीच में सब लोग कभी कभी, आप जानते हैं ना बच्चे लोग कैसे करते हैं, झूला ऊपर गया फिर पीछे गया तो कुछ लोग यहाँ से वहाँ भाग जाते हैं, तो उधर से आगे गया तो कुछ लोग यहाँ से यहाँ भाग जाते हैं, ऐसे बीच में से तुरंत ऐसे भाग जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इनके गले की मालाएं जो नीचे खड़े हैं और उनके गले की मालाएं जो ऊपर बैठे हुए हैं झूला पर, उलझ जाते हैं, है ना, उलझ जाते हैं, तो फिर वो झूला तो चलते रहता है ना, तो फिर इनकी माला उनकी माला जब उलझती है तो टूट जाती है, फिर टूटने पर सारे मोती मणि फूल सब बिखर जाते हैं, फिर सखियां जो है उसके नीचे जाकर सब बीनने लगती है महाप्रसाद, मोती झरर 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 आए, सब झड़ते रहते हैं, सब लोग भागते रहते हैं उनके पीछे प्रसाद ही लेने के लिए। इस प्रकार से किसकी माला किसके साथ उलझ रही है, किसकी माला खींची जा रही है, किसकी टूट रही है, कौन भाग रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा कोलाहल मच जाता है। हाँ, उसमें झूला फिर टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, क्योंकि बीचे ने नीचे जा रहे हैं, कोई ऊपर जा रहा है, कोई झूला दे रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई धक्का को हाथ दे के फूल निकालने की कोशिश कर रहा है, तो कैसा होता होगा, गोल 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 ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, फिर वापस सेटल हो जाता है, फिर सीधे घूमने लगता है, फिर साइड में, फिर राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर गोल गोल, फिर साइड में, फिर गोल गोल, इस तरह से रात भर झूला चलते रहता है। फिर बीच में झूले पर मिठाइयाँ आती है, पेय आते हैं, बीच में फिर ब्रेक भी होता है, फिर अचानक ठाकुर जी के मन में आता है कि और कुछ किया जाए, तो फिर वो कमर में से रंग निकालते हैं, सखियाँ झूला रही हैं, ये रंग उधेड़ना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में सखियाँ रंग निकालती हैं, फिर लाल पीला नीला हरा गुलाबी हर प्रकार का रंग से कुछ समय के लिए ऐसे हो जाता है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कौन झूला रहा है, कौन झूल रहा है, कौन कहाँ है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, सारा वातावरण जो है रंग बिरंगी रंगों से इतना भरता है, इतनी धुंध छा जाती है, कोई किसको दिखाई नहीं पड़ता है, और उसमें राधा रानी और कृष्ण भगवान एकदम गुप्त लीला करते हैं, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। फिर रंग जो है ढेर ढलता है, फिर दर्शन होने लगता है, तो उसके बाद भगवान जो है पिचकारी निकालते हैं, फिर सखियाँ भी पिचकारी निकालते हैं, फिर सारे पिचकारियों से रंग खेलते हैं, सब पेड़ों पर रंग हो जाता है, सब बेलियों पर रंग हो जाता है, सब लोग रंग जाते हैं, फिर गीत गाते हैं, इस तरह से ये झूला और होली साथ में खेलते हैं। भगवान जो है ना, इनकी लीला इतनी अद्भुत है, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि होली के मौसम में होली खेलना है, जब उनका मूड आए तब खेलते हैं। तो कवि कर्णापुर जो है आनंद वृंदावन चंपू में, उन्होंने लिखा है कि कैसे लास्ट में अध्याय में लिखा है उन्होंने, कैसे झूला झूलते हुए अचानक भगवान होली खेलने लगते हैं, सब लोग आनंद लेते हैं उसका, बहुत सुंदर। तो ऐसा ही सुंदर उत्सव है, हम तो केवल चिंतन ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, कब प्रवेश देंगे, कब हमारी योग्यता होगी, कौन जानता है, हम तो केवल चिंतन ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कभी सेवा का मौका मिलेगा झूला में तो भाग्य होगा हमारा, वह भाग्य झांकी निहारा करेंगे, उन्हें झूलते झूलते निहारा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन का उद्देश्य ही राधा और कृष्ण को आनंद देना है, संतोष देना है, और इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। राधा रानी और कृष्ण भगवान को सेवा के माध्यम से, नम्रता के माध्यम से प्रसन्न करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। उनका आनंद ही हमारे लिए सर्वस्व है, उनका आनंद ही हमारे लिए सर्वस्व होना चाहिए, उसी के लिए सांस है, उसी के लिए धड़कन भी चल रही है, ताकि उनको आनंद मिले, उनके नाम में रुचि हो, उनकी सेवा में रुचि हो, हर कदम, हर विचार, हर इच्छा उन्हीं के लिए की जाए, इसीलिए अलग अलग उत्सव मनाते हैं, अलग अलग प्रकार से, विविध कारणों से, विविध मौसम से, हाँ, विविध तिथियों के आधार पर ठाकुर जी को, राधा रानी को प्रसन्न किया जाए, उसी में हमारे जीवन की परिपूर्णता है, उसी में हमारे अधूरे दुखमय जीवन में आनंद है, उसी में हमारी भी संतुष्टि है, और हमारा जीवन भी उसी में सफल है। जिससे मैं उनकी याद, उनकी स्मृति, उनकी प्रसन्नता नहीं होगी, उस समय जीवन फिर नारकीय बन जाएगा, फिर दुखमय हो जाएगा, फिर कष्ट आएगा, पीड़ा होगी, यातना होगी। इसलिए जब तक ये भौतिक शरीर है, तब तक उनका नाम लेकर उन्हीं की सेवा करना, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। मानस देहो गेहो जो किछु मो आर पिलुन तुआपदे नंद किशोर। हे भगवान, हे नंद किशोर, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा, सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है, सब कुछ आपका है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआदिकार। आप अगर जिंदा रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, मारना चाहते हैं तो मार दीजिए। मैं तो आपका नित्य दास हूँ और आपके प्रति, मेरे प्रति आपका अधिकार है कि आप मुझे जैसा चाहे व्यवहार मेरे साथ कर सकते हो। अगर आपको रखना है आपके चरणों में तो रखिए, दोबारा लाना है तो आपके भक्तों के घर में कीटक भी बनकर आने को तैयार हैं। अभक्तों के घर में ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए हमको, लेकिन भक्तों के घर में अगर कीटक का भी जन्म मिला तो भी हमको चाहिए, उन्हीं के शरण में रहना चाहते हैं। मानस देहो गे हो जो किछु मो अर्पिलुन तुआपदे नंद किशोर। ये सब कुछ आपके चरणों में होना चाहिए, यही हमारी एकमात्र अभिलाषा है। आपने ये इतना कीमती मनुष्य जीवन दिया है, विषयों के पीछे हम भाग रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा होगी तो हम विषयों को छोड़कर आपके चरणों में आ सकते हैं, आपको प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। आप झूला झूलिए, हमसे झुलवाइए, हमको सेवा दीजिए, हमको सेवा में लगाइए, यही हमारी एकमात्र इच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।